बंद पुस्तक एक लेक्चर नंबर 3
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धादद्धमला विशुद्ध बुद्धि अलद्ध सौवत्था तिरुवण शिरसे हरया पश्यन्तु वडारया सर्वे।
आचार्य श्री भूतबलि भगवान विरचित यह महाबंध नामक अपना ये विषय शुरू हुआ है। उसमें पहले पुस्तक में भी हम प्रस्तावना को देखते हुए 58 पेज पर आए थे। कल हमने नमोकार मंत्र के बारे में कुछ पढ़ा था, वहां से थोड़ा जो हमने नहीं पढ़ा था उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। 52 पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ पर यहाँ तो ये नमोकार मंत्र की प्राचीनता लिखा है लेफ्ट साइड में 52 पेज पर बीच में, वहां से देखते कि नमोकार मंत्र अनादि मूल मंत्र, वो अनादि से चला आ रहा है। अभी इस काल में किसी ने उसकी रचना नहीं की। 52 पेज वो गाथा के ऊपर। तो जैन परंपरा में यह प्रसिद्धि है कि अनादिमूल मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलो मत। उसका अर्थ ये अनादि मूल मंत्र है और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है, यानी सर्वोत्कृष्ट मंगल रूप है। इसके सिवाय मूलाराधना टीका में अपराजित सूरी ने कहा है कि गणधर ने नमो रंताणम इत्यादि शब्दों द्वारा सामायिकादि लोक बिंदुसार पर्यंत समस्त परमागम में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। ये सामायिकादि लोक बिंदुसार वो क्या है? सामायिक वगैरह वो प्रकीर्णकों के नाम है और लोक बिंदुसार दो इसका नाम है ना, पूर्व का नाम अंतिम लोक बिंदुसार त्रिलोक बिंदुसार। यद्येवं सकलस्य श्रुतस्य सामायिका देहे लोक बिंदुसारान्तस्य आदौ मंगलम कुर्वद्भिः गणधरैः नमो अरहंताणम इत्यादिना कथम पंचाना नमस्कार कुतः। त्या कहते कि सामायिक से लेकर लोक बिंदुसार तक सभी में वो मंगल रूप से उन्होंने नमोकार मंत्र को ही लिया है। वहां पर यहाँ प्रायश्चित में नमोकार का उपयोग। मुनि जीवन में प्रतिक्रमण रूप अंतरंग नय का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में अपराध न करने वाले भी श्रमणों को प्रतिक्रमण रूप प्रायश्चित करने का विधान है। शेष 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में होने वाले मुनियों के लिए ऐसा कथन नहीं आया है। उनके तीर्थ में दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण रूप प्रायश्चित किया जाता था, किंतु आदि जन और अंतिम जन के तीर्थ में दोष लगाने की सदा संभावना रहने से प्रायश्चित्त कहा है। प्रायश्चित्त के भेद प्रतिक्रमण में नमोकार मंत्र के जाप का आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान है। मूलाचार में कहा है, मूलाचार ग्रंथ का नाम है, तो उसमें कहते हैं मुनियों के आचार संबंधी चरणानियों का ग्रंथ है, वहां लिखते हैं सप्परिक्रमणोदम पुरिमस्य पश्चिमस्य जिनस्य अवराहे परिक्रमणम् मध्यमयाणम् जिनवराणम्। आदि जीने ने आदिनाथ भगवान और पश्चिम जीने ने महावीर भगवान, उन्होंने प्रतिक्रमण युक्त धर्म का उपदेश दिया है। अपराध न होने पर भी प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, ऐसी आद्यंत आदि और अंत तीर्थंकरों ने शिष्यों को आज्ञा दी है। मध्यम तीर्थंकरों ने अपराध होने पर प्रतिक्रमण कहा है, इसका हेतु इसका कारण मूलाचार में कहा है, मच्छिमयादिण बुद्धि यज्ञमणा अमोलखाय तमाजमाचरंतिम तम ग्रहंता विसोचंती। मध्यम तीर्थंकरों के शिष्य दृढ़ बुद्धि अर्थात मजबूत स्मरण शक्ति युक्त थे, एकाग्र मन थे, मोह रहित होते थे। इससे उनसे जो अतिचार होता था उस दोष की वे ग्रहा करते थे और शुद्ध चारित्र वाले बनते थे। यानी वहाँ प्रतिक्रमण का कोई उपदेश नहीं था, अभी पहले तो मुनि जीवन ही मालूम नहीं था ना आदिनाथ तीर्थंकर के काल में, तो उन्होंने तो ऐसा उपदेश दिया था। और फिर अंतिम में अभी वो जो काल दोष के कारण उन्होंने भी वैसा उपदेश दिया था। हाँ, ग्रहाय ने अपनी दोषों की निंदा करना। प्रतिक्रमण तो ये दिन के अंत में रात्रि के अंत में वगैरह अलग अलग उनकी वो दिनचर्या में आ जाता है मुनियों के। पुरीम चरिमा दुजम्मा चल चित्ता चेव मोहलखा च तो सौ अपडिकमणम अंधलम घोड़य दिठंता। आद्यंत तीर्थंकरों के शिष्य चंचल चित्त है, उनका मन दृढ़ नहीं है, मोह से उनका मन आक्रांत है, वे रुजु जड़ और वक्र जड़ है। आद्यंत यानी आद्यंत वो पहले बताया था ना, गाथा में आया था अभी। हाँ, मोह से उनका मन आक्रांत है। हाँ, ये जिसको कहते हैं ना कि क्षोभ हो जाता है उससे। वक्र बुद्धि और रुजु बुद्धि, सरल बुद्धि वक्र जड़। जड़ क्यों कहा? नहीं नहीं, जड़ शब्द क्यों लिया? रुजु जड़ और वक्र जड़, वो जड़ है नहीं, हम कहते ना मंद है। अतः सर्व प्रतिक्रमण दंडकों का वे उच्चारण करते हैं, उनके लिए अंधे घोड़े का दृष्टांत है। जैसे वैद्य पुत्र ने अंधे घोड़े की औषधि का ज्ञान होने से नेत्र की भिन्न भिन्न दवाओं को क्रम क्रम से लगा उसे रोग मुक्त कर दिया, उसी प्रकार सर्व प्रतिक्रमणों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि सर्व प्रतिक्रमण दंडक कर्म क्षय के कारण है। यानी जितना दोष लगा है उसका उतना उच्चारण नहीं करते तो सबका कर देते, ऐसा कहते हैं। यानी उसमें से जो कुछ दोष लगा होगा उसका निवारण। उच्छ्वास का उपयोग दैवसिक यानी दिवस के अंत में जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसको कहेंगे दैवसिक। रात्रिक यानी रात्रि में जो दोष लगा है वो अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कहेंगे तब जो प्रतिक्रमण होता है उसको रात्रिक कहेंगे। पाक्षिक यानी एक पक्ष के अंतर पंद्रह दिन के बाद। आदि में क्या क्या होता है मालूम है? सांवत्सरिक भी होता है, चातुर्मासिक होता है सांवत्सरिक। सांवत्सरिक यानी वर्ष के बाद है, और फिर पूरे लाइफ टाइम के बाद भी होता है। उत्तर कहते हैं ना, क्या कहते हैं? उत्तर प्रतिक्रमण कहते हैं ना उसको, संलेखना लेते तभी। उनमें यानी जो प्रतिक्रमण है उनमें नमोकार के जप की आवश्यकता कही गई है। मूलाचार में लिखा है दैवसिक प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग समझते हैं? काय से नहीं शरीर से उत्सर्ग होना है, उससे भिन्नता का उसमें स्थिर होना, वो उसका सच अर्थ है। परंतु कायसर में ऐसे खड़े रहते हैं पद्मासन में, सॉरी खड़गासन में खड़े रहते हैं खड़गासन में, और फिर वहां नमोकार मंत्र का जाप किया जाता है। तो प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में 108 उच्छ्वास करना चाहिए। 108 में एक अभी बताएंगे कैसे, अर्थात 36 बार पंच नमस्कार का जाप करना चाहिए। एक बार नमोकार का पाठ करने में 3 उच्छ्वास का काल लगता है। जैसे नमो अरियंताणम नमो सिद्धानम, एक उच्छ्वास हो। नमो आयरियाणम नमो वोझायाणम में दूसरा उच्छ्वास, तथा नमो लोए सवसावणम पदोच्चारण में तीसरा उच्छ्वास होता है। प्राणवायु को भीतर लेना और बाहर छोड़ना यह उच्छ्वास का लक्षण है। श्वास और उच्छ्वास दोनों मिलकर। रात्रिक प्रतिक्रमण में 54 उच्छ्वास करना चाहिए। दैवसिक में 108 बताए, रात्रिक में उससे आधे 54, अर्थात 18 बार पंच नमस्कार मंत्र को 54 उच्छ्वासों में पढ़ना चाहिए। पाक्षिक प्रतिक्रमण में 300 उच्छ्वासों में अर्थात 100 बार नमोकार पढ़ना चाहिए। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 400 उच्छ्वास और सांवत्सरिक में 500 उच्छ्वास कहे। मुनियों के लिए जो कुछ नियम है उसकी बात है। अनगार धर्मामृत टीका में यह पद्य उद्धृत किया गया है। अनगार धर्मामृत दो ग्रंथ, एक अनगार और एक सागर, सागर यानी श्रावक। अनगार यानी जो घर में नहीं रहते, अनगार। सागर यानी घर में रहने वाले उग्रस्त। अनगार यानी मुनि। तो मुनियों के जो आचरण संबंधी ग्रंथ है उसका नाम है अनगार धर्मामृत। आशाधर जी का, हाँ, पंडित आशाधर जी ने लिखा है। यहाँ लिखते हैं, सप्तविंशति रुच्छ्वासा संसारो मूल नक्षमे संति पंच नमस्कारे नवधा चिंतिते सति। पंच नमस्कार मंत्र का 9 बार चिंतन करने में 27 उच्छ्वास होते हैं। इस प्रकार इसका चिंतन संसार का उच्छेद करने में समर्थ होता है। नमोकार मंत्र के पाठ में 3 उच्छ्वास प्रमाण काल लगता है। यह उच्छ्वास व्यवहार काल का भेद कहा है। आवली असंख्य समया संख्येत जावली समूहम उच्छ्वासो, यानी असंख्यात समयों की आवली होती है। मैं मालूम है जगन्य युक्ता संख्यात समयों की एक आवली होती है, और ऐसे संख्यात आवली का समूह वह है उच्छ्वास। आगे लिखा देखो, असंख्यात समय प्रमाण आवली होती है तथा संख्यात आवली प्रमाण उच्छ्वास होता है। चरणान योग रूप आगम में नमोकार के जाप की गणना को उच्छ्वास के माध्यम से भी कहा गया है। जैसे 9 बार नमोकार का जाप करे, इसको इस रूप में कहेंगे कि 27 उच्छ्वास करते हैं। ये कथन पद्धति है। काय सर्ग में क्या करना, 27 उच्छ्वास करना यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। अनगार धर्मामृत में लिखा है, उच्छ्वासास्युस्तन उत्सर्गे नियमान्ते दिनादिशु पंचस्वष्ट शतार्ध त्रि चतु पंचशत प्रमा दिन रात्रि पक्ष चतुर्मास संवत्सर। इन 5 अवसरों पर वीर भक्ति करते समय जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें क्रम से 108 दिन के लिए, 54 रात्रि के लिए, 300 पक्ष के लिए, 400 चतुर्मासिक के लिए और 500 संवत्सरिक प्रतिक्रमण में उच्छ्वास हुआ करते हैं। अभी इसको अनादि मंत्र क्यों कहते हैं वो बता रहे। जैन धर्म का प्राण श्रवण धर्म है यानी मुनि धर्म, श्रवण यानी मुनि। उस मुनि धर्म का निर्दोष बनाने के लिए साधुगण सदा प्रतिक्रमादि द्वारा अपनी आत्मा को, सॉरी प्रतिक्रमणादि द्वारा अपनी आत्मा को परिशुद्ध करते हैं। उस प्रतिक्रमण कार्य में पंच अहंकार का स्मरण अत्यंत आवश्यक अंग है। भगवान ऋषभनाथ तीर्थंकर के समय में भी जो साधुराज होते थे वे प्रतिक्रमण करते समय नमोकार मंत्र को पढ़ा करते थे। अतः यह नमोकार मंत्र गौतम गणधर से ही संबंधित नहीं है, किंतु इसका संबंध प्रथम गणधर ऋषभ सेन स्वामी से भी रहा है। यथार्थ में यह अनादि मूल मंत्र है। 14 पूर्व के अंतर्गत जो विद्यानुवाद नाम का दशम पूर्व है उसमें नमोकार मंत्र को 35 अक्षरों से युक्त मंत्र के रूप में निरूपण किया गया है। अतः चरणानुयोग रूप परमागम के प्रकाश में भी नमोकार मंत्र अनादि मूल मंत्र निश्चित होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रित हिंदी धवला टीका के नाम पर जिन्होंने यह धारणा बना ली है कि यह नमोकार मंत्र पुष्पदंत आचार्य की रचना है वह योग्य नहीं है, यानी किसी की रचना नहीं है, वो अनादि से चला रहा है। यह नमोकार मंत्र उसी प्रकार अनिबद्ध मंगल रूप है, अनिबद्ध ने किसी के द्वारा निबद्ध ने रचित नहीं है। जिस प्रकार नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम आदि वेदनाखंड वर्गनाखंड तथा महाबंध के मंगल सूत्र अनिबद्ध मंगल है, यानी जो मूल वहाँ अंगों में आई थी बात नमो जिनाणम जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करना ही वहाँ मंगल रूप से लिया है। अभी उस पर कोई चर्चा की है उन्होंने, हमने कल इसको देखा था। होता है दीक्षा देते समय वगैरह सब इसमें बात बताई है। ये प्रतिलिपि की बात हमने देखी थी कल। अब यहाँ हम आए हैं 58 पेज पर, नीचे से वो पैराग्राफ है ना, नीचे से पांचवी लाइन, महाबंध शास्त्र मिला ना, द्वादशांग वाणी से साक्षात संबंध रखता है। इस ग्रंथराज पर कोई भी टीका उपलब्ध नहीं होती है। कहते हैं कुंबलूर नामक आचार्य ने महाबंध पर 7000 श्लोक प्रमाण टीका रची थी, किंतु उसकी अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। उपलब्धि महाबंध के सूत्र गद्य रूप है, इसके प्रारंभ में 16 गाथाएं आई है, स्थिति बंधाधिकार में ब के ऊपर बिंदी, 3 गाथाएं और पाई जाती है। अभी महाबंध में विभिन्न परंपरा का संकेत, यह 40,000 श्लोक प्रमाण महाबंध शास्त्र भूतबली स्वामी की अनुपम रचना है। इस ग्रंथ में आचार्य भूतबली स्वामी ने कहीं कहीं भिन्न गुरु परंपरा का द्योतक उल्लेख भी किया है। वे काल प्ररूपणा में तेजोलेशा की अपेक्षा प्ररूपणा करते हैं कि थीन गिद्धि तिगम अनंतानुबंधी चार एय उत्कस वे सागरोम साधि रज्ञानी नवरी केसिम च जहन्न एक समय, यानी वो जो अन्य अन्य प्ररूपण है ना किसी आचार्य की अपेक्षा वो भी वहां बताते थे, वो तो जब आएगी बात। पद्मलेशा का कथन करते हुए आचार्य लिखते हैं, तीन गिद्धि अनंतानुचार एकसम उपकस 18 साधी नवरी केसिमच एक समय, यहाँ केसिमच शब्द द्वारा अन्य पक्ष का प्रतिपादन किया गया। यह अन्य पक्ष किनका है इसका उल्लेख नहीं हुआ है, यह प्रकृति बंध खंड का कथन है। यानी वहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी कथन है अभी कितना काल है क्या है, तो उसमें जो दो मत आते हैं, क्योंकि अन्य अन्य बहुत सारे आचार्य हुआ करते थे अलग अलग प्रांतों में, तो वो परंपरा चलती रही, तो कहीं वो तो भिन्नता आएगी अभी कहाँ पर हुई, क्या हुआ वो पता नहीं, परंतु उसका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया, उसकी यहाँ बात बताई। अब नीचे देखते, यदि वृषभ आचार्य का भिन्न मत, दूसरा वो नया पैराग्राफ। गोमर सार ने अभी अभी जो हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका जिस पर है ना, कर्मकांड जीवकांड वगैरह सब, तो उसका नाम है गोमर सार। ये गोमर सार की रचना नेमीचंद्र आचार्य ने की। तो गोमर सार में भूतबली आचार्य के कथन से भिन्न कषाय प्रावृत के चूर्णी सूत्रकार यतिवृषभ का कथन मिलता है। गोमर सार में जो कुछ कथन है वो तो चूर्णी सूत्र के आधार से मिलता है। यतिवृषभ आचार्य कहते हैं कि नरक तिर्यंच मनुष्य और देव में उत्पन्न हुए जीव के प्रथम समय में क्रमशः क्रोध, माया, मान तथा लोभ का उदय होता है। यानी नारकियों के लिए क्रोध, तिरंजों के लिए माया, मनुष्य के लिए मान और देवों में लोभ। अर्थात नारकी के क्रोध का, तिरंज के माया का, मनुष्य के मान का और देव में लोभ का उदय प्रथम समय में पाया जाता है। किंतु भूतबली आचार्य का कथन है कि इस विषय में कोई नियम नहीं है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने दोनों मान्यताओं का प्रतिपादन इस गाथा में किया है। यानी उन्होंने वो जीवकांड में उन दोनों के ही कथन का उल्लेख कर दिया। नीचे हम पढ़ते हैं गाथा के नीचे। इस काल में इस क्षेत्र में केवली और श्रुत केवली का असद्भाव रहने से, क्योंकि हम उन दो मान्यता में कौन सी सही है इसका निर्णय हम तो नहीं कर सकते, और किसी को पूछना है तो श्रुत केवली तो इस काल में है नहीं, ना कोई केवली भगवान है, तो उनका असद्भाव रहने से, सद्भाव यानी उनकी प्रेजेंस, असद्भाव यानी अभी कोई है नहीं है, गोमर सार में दोनों मान्यताओं का कथन किया है। और यही उन्होंने वहां पर संस्कृत में भी लिखा है, उसका अर्थ आगे लिखा है कि इस भर क्षेत्र में तीर्थंकर तथा केवली का अभाव है और उक्त सिद्धांत शास्त्रों के कर्ताओं से अधिक ज्ञानियों के पश्चातवर्ती आचार्यों का अभाव है। यानी जिन्होंने ये ग्रंथ बनाए हैं उससे भी अधिक ज्ञानी अभी कुछ नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में दोनों मतों का कथन करने के सिवाय अन्य मार्ग नहीं है। हम अपनी ओर से उसमें ये नहीं लगा सकते कि ये सही है गलत है। जो बात उन्होंने भी स्वयं नहीं किए सिद्धांत चक्रवर्ती होने पर भी, क्योंकि हम उसमें नहीं कुछ कहें। गोमरसार कर्मकांड में भी भूतबली स्वामी का मत प्रतिपादन के साथ दूसरा भी मत प्रदर्शित किया है। उदय विच्छित्ति का वर्णन करते हुए भूतबली आचार्य का मत इस गाथा द्वारा व्यक्त किया है। हमें मालूम है मिथ्या तो गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय की विच्छित्ति होती है। एक मत है पहले में पांच और दूसरे में नौ, और दूसरा मत क्या है नौ और पांच नहीं दस और चार, दस और चार, पांच और नौ या दस और चार, टोटल चौदह तो होती है ना दोनों मिलकर। बोलो पांच कौन सी है? मिथ्यात्व पांच लेंगे तो एक इंद्रिय नहीं लेना। मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, और नौ में अनंतानुबंधी की चार, एक इंद्रिय स्थावर और द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, और ये पांच के साथ उनको लेना है एक इंद्रिय स्थावर और द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय। यदि उसको पहले गुणस्थान में लेंगे तो पहले गुणस्थान में दस की विच्छित्ति कहेंगे, और दूसरे में अकेले अनंतानुबंधी चार ले गए, उदय की विच्छित्ति चल रही बंद की नहीं होता। यही बात उन्होंने लिखी है नीचे, मिथ्या तो गुण स्थान में पांच, साधन में नौ, मिश्र में एक वगैरह वगैरह आगे। और नीचे के देखो एकदम लास्ट दो लाइन, अन्य आचार्य परंपरा से क्या है, मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में यानी पहले में कितने दस, फिर चार, फिर आगे तो वैसे ना एक है, सत्रह है, पांच है, चार है, छह, उसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया उन्होंने। और ये लास्ट में भी बताया था ना तीस और बारह, संयोगी में तीस बताए थे, अयोगी में बारह बताए, और वहां पर संयोगी में उनतीस बताए, अयोगी में तेरह बताए, ये भी डिफरेंस था। क्यों डिफरेंस था? क्योंकि किसी को वेदनीय का साता वेदनीय की उदय होती, किसी के असाता, उसकी अपेक्षा वो 30 लेना का 29 लेना इसकी बात। अब आगे आते यानी ये जो जहां जहां दो दो मत है वो उन्होंने वहां लिख दिए हैं, दोनों ही मतों का उल्लेख किया है। आगे महाबंध का प्रभाव। समस्त जैन वांग्मय में बंध के विषय में महाबंध श्रेष्ठ रचना है। इतना ही नहीं किंतु विश्व के कर्म संबंधी साहित्य में यह श्रेष्ठ कृति ही अत्यंत प्राचीन पूज्य तथा प्रामाणिक ग्रंथ होने के कारण यह महाशास्त्र भूतबोली स्वामी के पश्चातवर्ती प्रायः सभी महान शास्त्रकारों का बंध के विषय में मार्गदर्शक रहा है। तत्वार्थवार्तिक अलंकार के देखने से ज्ञात होता है कि अकलंक स्वामी पर महाबंध का प्रभाव पड़ा है। वे महाबंध को आगम शब्द से संकीर्तित करके अपना आदर तथा श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं। हम अभी इसको संस्कृत को छोड़ देंगे, आगे बढ़ते नीचे भी गोमरसार पर भी महाबंध का प्रभाव स्पष्टतः दृग गोचर होता है, यानी दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। उदाहरणार्थ इस प्रकृति बंधाधिकार में के बंध स्वामित्व विषय अध्याय से तुलना करें तो पता चलेगा कि यहाँ वर्णित कर्म प्रकृतियों के बंधकों अबंधकों आदि का कथन गोमरसार कर्मकांड की मिच्छत्त मुंड संधा, ये बंध विच्छित्ति की बात है ना, आदि गाथा तक पद्य रूप में निबद्ध है। बाकी कहाँ क्या क्या है उसकी बात वहां उन्होंने बताई। अब ग्रंथ की उपयोगिता नीचे देखते हैं। भौतिक उपयोगितावादी महाबंध को देखकर आनंदामृत पान नहीं कर सकेगा, कारण उसकी दृष्टि में बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही आत्म उपलब्धि है। क्या कहते हैं अभी वर्तमान जो है भौतिकवादी है ना सब, क्या फायदा वाले किसमें फायदा गिनते हैं? अरे दुकान में बैठेंगे डेढ़ घंटा रोज तो कुछ आमदनी होगी, द्रव्य द्रव्य दृष्टि वाले हैं। अनेक व्यक्तियों की यह धारणा रही है इन सिद्धांत ग्रंथों में अपूर्व तथा अश्रुत पूर्व विद्या का भंडार है, जिसके बल से लोहा सोना रूप में परिणत किया जा सकता है। क्या कहते हैं इसमें ऐसी कुछ विद्या होनी चाहिए तो उसके लिए और इसे ऐसी कुछ नहीं पाई जाती इसमें क्या पाए। ये आकाश में विमान उड़ाए जा सकते हैं आदि विविध वैज्ञानिक चमत्कारों का आकर होने से, आकर समझते हैं समूह, समुद्र को भी कहते हैं रत्नाकर, किसको कहते हैं आपको मालूम है रत्नाकर किसको कहते हैं? समुद्र को। आकर यानी उसका संग्रहालय, वहां उसका जहां होते हैं रत्न पाए जाते हैं। यहाँ आकर यानी उसका वैज्ञानिक चमत्कारों का आकर यानी समुद्र का हो मोटा बड़ा कलेक्शन होने की मधुर कल्पना के कारण, ये कल्पना के कारण लोगों की इन शास्त्रों के प्रति अत्यधिक ममता रही, किंतु प्रत्यक्ष परिचय के द्वारा जब यह ज्ञात होता है कि महाबंध में केवल प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश रूप बंध चतुष्टय का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन है, तब वह सोचता है कि इससे हमें क्या करना है, अपना काम करो, ऐसी रचनाओं में अपना अमूल्य समय का व्यय क्यों किया जाए। आपातः यह दृष्टि प्रिय तथा आकर्षक मालूम पड़ती है, किंतु ज्ञानवान व्यक्ति को यह विचार अविद्यांधकार पूर्ण प्रतीत होता है। लौकिक अर्थभक्त अर्थ समझते लौकिक अर्थभक्त अनर्थ की जननी तथा आत्मनिधि का लोप करने वाली सामग्री को सर्वस्व मानता है। अर्थ का भक्त हो गया ना, अर्थशास्त्र समझते हैं ना, इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं अर्थशास्त्र, ये अर्थ भक्त यानी क्या है? देखो हमारे घर में जो कुछ आते हैं ना, क्या न्यूज़पेपर कौन से अर्थ के संबंध में आते हैं? इकोनॉमिक टाइप्स है ना, जिनवाणी वाली कोई नहीं बात आती, डेली कोई नई आती होगी क्या? नहीं, एक पुस्तक चलेगी, किसमें? पूरे 15 लोगों के फैमिली में, ऐसा होता ही नहीं होता। कहते सबकी साड़ी तो अलग अलग होती है, सबका बैंक बैलेंस, सबका कपड़ा, सब सब कुछ अलग। अरे पेपर भी जो दूसरे को नहीं चलेगा, चाय पीते समय अपना अपना चाहिए। तो लौकिक अर्थभक्त अनर्थ की जननी तथा आत्मनिधि का लोप करने वाली सामग्री को सर्वस्व मानता है। ये सामग्री कैसी? अनर्थ की जननी है। वह इन ग्रंथों में भौतिक विज्ञान की सामग्री न पाकर निराश होता है। यानी इसमें भी क्यों ढूंढता है? इसके पीछे लगता है कि भौतिक सामग्री कुछ मिलेगी इसमें। किंतु ज्ञानवान तथा आत्मनिधि के वैभव को समझने वाला सत्पुरुष यह अनुभव करता है कि वास्तविक वैज्ञानिक चमत्कार पूर्ण सामग्री से यह महाशास्त्र अपूर्ण है, यानी परिपूर्ण है, भरा हुआ है। यही तो वैज्ञानिक है ना, ये तो रियल विज्ञान है, ये तो साइंस है, क्योंकि ये तो कर्म तो दिखते नहीं और उसका पूरा साइंस का साइंस इसमें पाया जाता है। आत्मा अपने प्रयत्न से कर्मजाल में फंसता है। कोई विचार नहीं है। जो ज्ञान नामक सामग्री बंधन को और पुष्ट करती है वह तो महान अविद्या है। है तो ज्ञान, ये ज्ञान के आधार पर ही जो कुछ नए नए आविष्कार हो रहे, खोज हो रहे, जो साधन सामग्री भोगों की उपलब्ध कराई जा रही है, तो क्या करते हो? बंधन को और अधिक पुष्ट करती है। तो कहते वो अविद्या है। ज्ञान कह दिया उसको, परंतु कैसा है वो? अविद्या है। अपने लिए उसका कुछ कार्य नहीं, उल्टा तो बंधन में पड़ने वाले।
महिला आके हमको बोली थी क्या है इसमें गायन कला भी बताई है इसमें
जिनवाणी
में, और आप उसको हमको सिखा देंगे ये आत्मा आत्मा की क्या बात कराते। तो ये सर्वज्ञ ने तो क्या नहीं जाना होगा,
अभी सभी विद्याएं होगी ना, गोबर ध्वनि में सभी वैद्यक भी है, संगीत भी है, सभी विद्याओं का उसमें कथन आता है। ये कहा ना, इसमें से क्या ढूंढना चाहते हैं? संगीत का जो रुचि वाला है वो इसमें से संगीत ढूंढना चाहते हैं। यहाँ आत्मविद्या जैसी या मोक्ष प्राप्त करने की चमत्कारिक विद्या इसमें है, तो उसको तो कोई नहीं चाहता। श्रेष्ठ कला विज्ञान विज्ञान या चमत्कार तो इसमें है कि यह आत्मा कर्मों की राशि को पृथक करके अपने अनंत तथा अमर्यादित विभूतियों से अलंकृत आत्मत्व को अभिव्यक्त करे। क्या कहे? इसमें श्रेष्ठ कला है, श्रेष्ठ विद्या है, ये श्रेष्ठ विज्ञान है, और ये अत्यंत चमत्कार इसमें है। कैसा है कि यह जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं? आत्मा कर्मों की राशि को पृथक करके अपने अनंत तथा अमर्यादित विभूतियों से अलंकृत आत्मत्व को अभिव्यक्त, यानी आत्मा अपने अपने स्वभाव को व्यक्त करे, आत्मत्व उसका प्रकट करे, अभिव्यक्त करे, यानी प्रकट करे, यानी अनादि से बंधन में है और अपना स्वरूप ही भूल चुका है वो, एक नहीं के बराबर कर दिया उसने अपने को, पुद्गल कही उसने वो पूरा उसी का अस्तित्व मानते, अपना अस्तित्व भी मानने को तैयार नहीं है। और इसमें ऐसा कुछ चमत्कारिक कहो या अलौकिक ऐसा कुछ उपदेश है, ऐसा कुछ विज्ञान ऐसी कला बताई है कि आत्मा अपने परिपूर्ण स्वभाव को प्राप्त करे। भगवान ऋषभदेव ने आसमुद्रांत, ये आसमुद्रांत क्या होता है अश्विन? आप समझते हैं कि नहीं? आ समुद्रांत क्या अर्थ है, क्या उसका? આ એને તક દેખો પહેલે મેં આંખો કા વર્ણન કરતે થે તો આંખો કા વર્ણન સુના આ નયન કર્ણ નહીં સમજે આકર્ણ નયન આ નયન કર્ણ નહીં આકર્ણ નયન હમ ઉસકા વ્યંગ કરતે થે આ નયન કર્ણ નહીં સમજે ઉસમે ક્યા વર્ણન આતા હૈ કાનોન તક કે આંખે આકર્ણ નયન કર્ણ તક ઉનકી આંખે એસી બડી બડી હૈ તો યહાં કહેતે આ સમુદ્ર એને સમુદ્ર તક ફૈલી થી આ સમુદ્રાંત સમુદ્ર કે અંત તક ફૈલી હતી એને પૂરે વિશ્વમાં ફૈલી હતી હમારા વ્યંગ એસા હૈ કે વહાં તો આંખો કી બાતે બડી 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 આંખે તો હમ કહેતે બડે બડે કાન હૈ કૈસે હૈ આ નયન કર્ણ આપણે નહીં સુના અજાનુ બાહુ ભી વર્ણન સુના જાનુ એને ની જોઈન્ટ અજાનુ એને ની જોઈન્ટ તક હાથ જીસકે લંબે ખડે રહો તો શોર્ટ હોતે પરંતુ એ તો એ તો ચલા કા પુરુષમ કા વર્ણન આતા હૈ મૂર્તિયાં દેખો ઘુટનો તક ઉસકે હાથ એસે લંબે દિખતા હૈ જબ એસે કાયસ ચડ કે ખડે રહેતે હૈ તો ઘુટનો તક ઉસકે ની જોઈન્ટ તક તો યહાં કહાતે કહેતે હૈ કૈસી ભાષા એ લિખને વાલે દેવેન્દ્રજી શાસ્ત્રી હૈ હા પ્રસ્તાવના લિખને વાલે નિમચ વાલે અપને ભૂગોળ શિબિર મેં આયે થે યાદ હૈ ઓર ઉન્હોને ઇતના સરાહા થા કે આપને એસે નીરસ વિષય કો ઇતના ઉત્કૃષ્ટ તરીકે સે બતાયા ઉસમે આપને લોગો કો તત્વ જ્ઞાન સિખાયા દ્રવ્યનિયોગ કી બાતે ભૂગોળ મેં સિખાયા વો આયે થે એક દિન કે લિયે રુકે થે પૂરે ચાર દિન 20 ઘંટે યે જો પ્રસ્તાવના લિખ રહે ના દેવેન્દ્ર કુમાર શાસ્ત્રી નિમચ વાલે યે બહુ સિનિયર થે ઓર પ્રાકૃત કે કાફી અચ્છે પંડિત ઓર વો ભંડારકર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હૈ ના પુના કે ઉસમે અપને ગ્રંથો કો કિતને હી ગ્રંથો કો સુધારના કા ભી કાર્ય કિયા ઉન્હોને સલેખના લી થી કુંભોજ મેં થે લાસ્ટ લાસ્ટ ચલો તો ભગવાન ઋષભદેવ ને આ સમુદ્રાંત વિશાળ સામ્રાજ્ય કો છોડકર યાની ઉનકા વિશાળ સામ્રાજ્ય કો છોડકર ઉનકા સામ્રાજ્ય પૂરા રાજ્ય કહાં તક થા તો સમુદ્ર તક ફૈલા હુઆ થા સભી ઓર સે ઉસકો છોડકર આત્મવાન કી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કી અર્થશાસ્ત્રી યાની જો ઇકોનોમિસ્ટ જો કોઈ હૈ રૂપિયો કે હાનિ લાભ પર હી દૃષ્ટિ રખતા શિબિરો મેં જાના હૈ તો કિતના અપના અભી ક્યા હૈ ધંધે કા મોસમ હૈ ચલ રહે ના અપના ક્યા કહેતે ઉસકો સીઝન સીઝન હા किंतु ज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप को ढकने वाले आश्रव को हानि तथा संवर निजरा को अपना लाभ समझता है यानी आश्रव कम हो जाना वो अच्छी बात है यानी संवर होना लाभ है और आश्रव का होना हानि है वह सच्चा संपत्तिशाली है जिसे आत्मत्व की उपलब्धि है હમ તો બાહ્ય મેં હમ ગરીબ હમ શ્રીમંત ઉસી કી ચર્ચા કરતે હૈ ઓર વહી ચમત્કાર પૂર્ણ શક્તિ વિશિષ્ટ હૈ જિસને કર્મ રાશિ કો ચૂર્ણ કિયા હૈ તથા ઇસમે ઉદ્યોગ કરતા રહેતા ઉદ્યોગ કહો ઉદ્યમ કહો એક વાત ઉદ્યોગ એને ઉસકા વ્યાપાર ક્યા હૈ ઇસી મેં હા ક્યોંકિ આત્મા મેં સ્થિત હોને સે આશ્રવો કી હાનિ હોતી હૈ સંવર નિર્જરા પ્રાપ્ત હોતે હૈ તો હાનિ પહેલે જો હો રહી થી ઉસસે કમ હુઈ ના और लाभ अधिक हो गया नाटक समय सार में कितनी सुंदर बात कही गई है हमने तो ये देखा है हा? जय जय जगवासी जीव थावर जंगम रूप ते निज बस करी राखे बल तोई के महाभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोदारो पिरण तंब ठाड़ो भयो मुछ मोरी आयो तिही थानक अचानक परम ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फेरी के आश्रव पचार्यो रन थंब तोड़ी डार्यो तक निरखी बनारसी नमत कर जोरी के। कितना अच्छा वर्णन किया। पहले वो आश्रव रूपी बलवान योद्धा का वर्णन किया, रणथंभ करके लड़ने को आया था, मूछ मोरी के ना मूछ पर ताव मार के आया था, और फिर वो ज्ञान नाम का सुभट आया और उसके कारण वो उसको आश्रव को पछाड़ दिया। अभिमानी आश्रव सुभट को पछाड़ कर विजय प्राप्त करने वाले आत्मज्ञानी को महाबंध सदृश शास्त्र अपूर्व बल प्रदान करते हैं। कर्मों का आत्मा के साथ जो बंध है वह इतना सुदृढ़ और सूक्ष्म है कि भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्रादि के प्रहार होने पर भी उस पर कुछ भी असर नहीं होता। आध्यात्मिक शक्ति के जागृत होते ही कर्मों का सुदृढ़ बंधन ढीला होने लगता है। ऐसे ग्रंथ उस आत्मिक तेज को प्रवृद्ध करते, विशेष वृद्ध करते, यानी बढ़ाते, जिसके द्वारा यह आत्मा कर्म बंधन के प्रपंच से मुक्त होने के मार्ग में लग जाता है। कर्मों के प्रपंच से छूटने का उपाय ही यथार्थ में सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ, चार भर है चमत्कार, संसार के समस्त भौतिक चमत्कार और एक आया और अन्वेषण। अन्वेषण यानी अभी नई नई जो खोज चल रही है, एक ओर रखकर दूसरी ओर कर्मनाश करने की आत्म चातुरी, चातुर्य कहो यहाँ चतुरी, चातुरी अथवा चमत्कार को रख संतुलन किया जाए, उसको तोला जाए, तो वह आत्मबोध की कला ही श्रेष्ठ निकलेगी। एक बाजू समस्त भौतिक चमत्कार और अन्वेषण, और दूसरी बात एक आत्म चातुर्य। तो कहते वो श्रेष्ठ है जो अनंत भव से बंधे हुए अनंत दुखों के मूल कारण कर्मों का पूर्णतया उन्मूलन कर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख को अभिव्यक्त कर देती है। भौतिकता की आराधना से आत्मत्व का ह्रास ही हुआ करता है। इसका ही कारण है जो जीव अपने स्व को भूलकर पर का उपासक बनता है। अनादिकाल से मोह महाविद्यालय में अभ्यास करने वाला और नए नए ट्यूशन लेके बैठता और नए नए लोगों के मोह महाविद्यालय में अभ्यास करने वाला यह जीव जहां भी जाता है और जिस किसी पदार्थ के संपर्क में आता है वहां वह या तो आसक्ति धारण करता है या द्वेष भाव रखता है। वीतरागता का प्रकाश कभी भी इसकी जीवन वृत्ति को आलोकित नहीं कर पाया। आलोकित ने प्रकाशित। महाबंध सदृश शास्त्र के परिशीलन से आत्मा को पता चलता है कि किस किस कर्म का मेरे साथ संबंध होता है। उसके स्वरूपादि का विशद बोध होने से राग द्वेष तथा मोह का अध्यास एवं अभ्यास मंद होने लगता है। आर्त और रौद्र नामक दुर्ध्यानों का अभाव होकर धर्म ध्यान की विमल चंद्रिका का प्रकाश तथा विकास होता है जो आनंदामृत को प्रवाहित करती है और मोह के संताप का निवारण करती है। समुद्र के तल में डुबकी लगाने वालों को बाह्य जगत की शुभ अशुभ बातों का पता नहीं चलता। इसी प्रकार कर्म राशि का विशद तथा विस्तृत विवेचन करने वाले इस ग्रंथारण अर्णव यानी समुद्र, ग्रंथ रूपी समुद्र में निमग्न होने वाले मुमुक्षु के चित्त में राग द्वेषादि संतापकारी भाव नहीं उत्पन्न होते, वह बड़ी निराकुल तथा विशिष्ट शांति का अनुभव करता है। व्यायाम आदि का सम्यक अभ्यासशील व्यक्ति व्याधियों के आक्रमण से प्राय बचा रहता है। इसी प्रकार ऐसे पुण्यानुबंधी वांग्मय के परिशीलन द्वारा भव्य जीव उस आध्यात्मिक परिशुद्ध व्यायाम को करता है जिससे आत्मा बलिष्ठ होती है और भौतिक चमक दमक चित्त में चमत्कृति या विकृति उत्पन्न नहीं कर पाता। यानी उसके लौकिक के कुछ खास उसकी वो देख कर भी उसके प्रति उसके कोई ललचाता नहीं मन उसका, तथा काम क्रोध मोहादि दोष आत्मशक्ति को न्यून नहीं कर पाता। आगे कहते विपाक विचय धर्म ध्यान का साधन। ये विपाक विचय क्या होता है?
कर्म के,
हाँ, विपाक यानी कर्म के क्या फल मिलते हैं आदि, कर्म संबंधी जो कुछ विचार चलेंगे ये तो धर्म ध्यान है। शास्त्रकारों ने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को निर्वाण का कारण बताया है। तत्वार सूत्र में सूत्र है परे मोक्ष हेतु, चार ध्यान में से पहले तो आर्त और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारण, और ये परे ने दो अन्य धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण। धर्म ध्यान के चार भेदों में विपाक विचय नाम का ध्यान कहा गया है। आचार्य अकलंक लिखते हैं कर्म फल अनुभवन विवेकम प्रति प्रणिधानम विपाक विचया, कर्मणाम ज्ञानावरणादीनाम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव प्रत्यय फलानुभवनम प्रति प्रणिधानम विपाक विचय। इसका अर्थ लिखते हैं ये तो राकार्थ थे तत्वार्थ राजवार्थिक, अकलंग देव ने लिखा है आचार्य अकलंग, कर्मों के फलानुभव विवेक के प्रति उपयोग का होना विपाक विचय है। फलानुभव विवेक यानी कर्म के फल संबंधी विचार करना, ज्ञानावरणादि कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के निमित्त से जो फलानुभव होता है उस ओर चित्त वृत्ति को लगाना विपाक विचय है। यानी सभी कर्मों के जो कुछ अन्य अन्य निमित्त से जो कुछ उसमें बातें होती है, कर्मों के विपाक आदि के विषय में अनुचिंतन करने से रागादि की मंदता होती है और कषाय विजय का कार्य सरल हो जाता है। समय प्रावृतकार के शब्दों में जीव विचारता है, ये कौन है समय प्रावृतकार मंजुवे? बराबर है, हम समय सार नाम लेते तो फट के उत्तर आ जाता है। यहाँ जो 50 से 55 वाली जो गाथा है ना, यहाँ तो 52 से 55 के लिए ही जीवस्य नत्थि वग्गो नवग्रणाणे वफड्या के नो अच्छपठाणा नेव अनुभाय ठाणानि जीवस्य नत्थि के जो यठाणान बंध ठाणा भी उदय ठाणा मगठाण या के नोटि बंद ठाणा जीवसन संकिले सठाणा वा नेव विसोही ठाणा नो संजम लद्धि ठाणा वा नेव जीव ठाणा न गुण ठाणाय अति जीवस जैन द्वे दे सौवे उगल दौवस परिणाम। इस जीव के न तो वर्ग है न वर्गणा है न स्पर्धक है न अनध्यवसाय न अध्यवसाय स्थान है न अनुभाग स्थान है। जीव के न योग स्थान है न बंध स्थान है न उदय स्थान है न मार्गणा स्थान है न स्थितिबंध स्थान है न संक्लेश स्थान है, न विशुद्धि स्थान है, न संयम लब्धि स्थान है, जीव के न जीव स्थान है, न गुण स्थान है, कारण ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। यह है परिशुद्ध परमार्थ दृष्टि। ये जो कथन है वो परमार्थ दृष्टि का परिशुद्ध परिपूर्ण शुद्ध दृष्टि का कथन है। मुमुक्षु व्यवहार दृष्टि को भी दृष्टिगोचर रखते भी लिखा, उसको नहीं मानेंगे तो सही नहीं होगा, उसका ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। व्यवहार दृष्टि को भी दृष्टिगोचर रखता है, यानी वो भी उसके ज्ञान में है। यदि एकांत शुद्ध दृष्टि पर आश्रित हो जाए तो फिर वह मोक्ष मार्ग के विषय में अकर्मण्य बनकर विषय आदि में प्रवृत्ति कर पाप पंक में अधिक निमग्न होता है। यानी सदाचार की बात छोड़े, ये जो मुझे वर्गणा गुणसान है ही नहीं अगर कहेगा, समझे, वो तो शुद्ध दृष्टि से कहा ये नहीं है। ये सब पर्याय की बात है। ये बंध स्थान उदय स्थान क्या है जीव के, अभी ऊपर के दो गाथा और नहीं लिए, 50 वगैरह 51 भी नहीं लिया उस, हाँ उसमें तो ये तो वर्णादि और रागादि उसमें सब वो भी बातें दी है, तो उसको ये तो आगे की बातें दी इसमें। तो वर्ग वर्गणा ने मुझे कर्मबंध है ही नहीं, है ही नहीं कहेगा, है ना व्यवहार दृष्टि से, और उसकी से सर्वथा नहीं मानेगा तो सम्यक तो ही नहीं रहेगा उसको, एक तो बात, और सम्यक तो नहीं है मिथ्या तो उसको सम्यक तो होने का भी चांस नहीं है, क्योंकि उसने सर्वथा मान लिया कि मुझे बंधन है ही नहीं है, स्वच्छंदी हो जाएगा और पाप में और रत हो जाएगा, यानी सभी पाप कार्य करते हुए मुझे बंध ही नहीं है कहेगा, निश्चयवासी हो जाएगा। तो यह कहते हैं कि व्यवहार दृष्टि को भी दृष्टिगोचर रखता है। कुंदकुंदाचार्य ने स्वयं लिखा है ना 12वीं गाथा में, व्यवहार 12वीं गाथा में क्या लिखा है, जानने लो प्रयोग, यानी ज्ञान का विषय है कि नहीं, वो जानने के लिए, आदर करने के लिए नहीं, परंतु ज्ञान में उसको अगर नहीं लेंगे तो पर्याय का ज्ञान है, हम किस पोजिशन में, उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। ये एकांत मान लेते, कोई व्यवहार नहीं की अपेक्षा उसको झूठा भी कह दिया है, ये व्यवहार है और व्यवहार झूठा है, किसकी अपेक्षा से, परमार्थ दृष्टि से, उसको अगर सर्वथा झूठ मानेंगे, सर्वथा है ही नहीं कहेंगे, तो है ही नहीं तो उसका कथन क्यों आता शास्त्र, सर्वथा नहीं होता तो उसका कथन ही नहीं आता शास्त्र में, ख्याल में है, वो तो है, जिस नए से कथन किया है उस नए से उसको जानना भी कार्यकारी है। तो यह कहते हैं कि यानी वो आलसू बनकर बस स्वच्छंद हो जाएगा कि मुझे तो बंधन नहीं, मुझे तो कुछ ये होते ही नहीं है। जिसने अपूर्ण अवस्था में भी अपने को साक्षात पूर्ण मान लिया है, निश्चयवासी हुआ ना, नहीं नहीं, अपूर्ण अवस्था में भी साक्षात पूर्ण मान लिया है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी आगे बढ़ने का कोई चांसेस नहीं, उसने तो मान लिया ना मैं तो परिपूर्ण शुद्ध ही हूँ, तभी क्यों उद्यम करेगा शुद्ध पर्याय में भी। इसी प्रकार निश्चय एकांत का आश्रय ह्रास का हेतु बन जाता है। व्यवहार एकांत वाला तात्विक दृष्टि को सर्वथा भूला, यानी कोई भी एकांत जो है, यहाँ उसको निश्चयवासी को निश्चय एकांत कह दिया, और व्यवहार का एकांत करने वाला तो तात्विक दृष्टि को यानी तत्व ज्ञान को सर्वथा भूला, अपने को दासोहम का पाठ पढ़ने वाला समझता है, दास भगवान दास मानने लगता है, दासोहम यानी मैं दास हूँ, ये शुद्धोहम वाला है ना, रोदासोहम वाला, सोहम की विमल दृष्टि उसे नहीं प्राप्त होती। सोहम का भक्त यदि कल्याण चाहता है तो उसे दासोहम के पूर्व में उदासोहम का पथ भी पकड़ना आवश्यक है। बहुत सुंदर लिखा है। अन्यथा एकांतवाद की महामारी उसका पिंड नहीं छोड़ती। महामारी समझते हैं ना, भयानक कॉलरा जैसे होते महामारी, कोई बचता नहीं उसके जो आती है तो। इस कारण समंत भद्र स्वामी कहते हैं निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते अर्थकृत, यानी निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष अन्य नए अपेक्षा रहित अगर नहीं मानेंगे सर्वथा हो जाता है तो मिथ्या एकांत हो जाता है। विवेकी साधक व्यवहार दृष्टि से विचारता है, विवेकी साधक उसका कभी कथन यानी कभी विचार व्यवहार दृष्टि से भी चलेगा निश्चय दृष्टि से भी चलेगा। तो कहते व्यवहारेण द्वेदे जीव सहवंती वर्णमादीय गुणठानंता भावा न तो कई निश्चय नयस्य। समयसार की गाथा 56 तक ये बताया है हमने, यहाँ तक अपना विस्तार से चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ निश्चय की बात आती है दूसरी आगे की गाथा में यहाँ लिखा है ना, स्वयं कुंकुंद आचार्य 56 नंबर की गाथा में लिखते हैं व्यवहारेण दु परंतु व्यवहार से एदे यानी ये सभी जीवस्य हवन्ति वर्णम आदि, वर्ण ने वर्ण आदि ये जो सभी बातें बताए हैं वर्णादि और रागादि, तो ये सभी जीव के होते हैं व्यवहार से होते हैं। गुणठानंता भावा न तो कोई निश्चय नयस्य, परंतु ये जो गुणस्थान आदि भाव जो है वो निश्चय नहीं से किसके नहीं है परंतु व्यवहार से होते नीचे न, ये वर्णादि गुणस्थान तक के भाव व्यवहार नहीं से पाए जाते हैं। जो है उसका निषेध करेंगे कि जो नहीं है सर्वथा उसका निषेध करेंगे, फिर उसका नाम लेने का जरूरत क्या था। हम हमेशा कहते पहले व्यवहार ने को खड़ा तो होने दो फिर उसका निषेध करो, पहले उसको सर्वथा करके निश्चय में वो है ही नहीं करके निश्चय ने कोई पहले पकड़ ले। दोनों ही नए से कथन होता है, व्यवहार ने समझाता है वस्तु को भेद करके संयोगों से ऐसा ऐसा सब, और फिर निश्चय ने वो परमार्थ दृष्टि को ग्रहण करके बताता है। पहले इसको समझेंगे नहीं वस्तु को तो निश्चय ने तक पहुंचेगा भी नहीं। अल्पज्ञानी पुरुषों के डबल के हुआ के लिए बंध के विषय में परिज्ञान कराने के लिए सूत्रकार उमा स्वामी ने लिखा है। ये कौन से सूत्र के करता है अश्विन भाई, सूत्रकार क्यों कहा, सूत्रकार उमा स्वामी कौन है तत्वार सूत्र को सब जगह सूत्र कहते हैं, सूत्र जी भी कहने का प्रकार, यानी वो इतना यानी परिपूर्ण शास्त्र है कि उसका नाम ही सूत्र जी कह के उसको पुकारते तत्वार सूत्र को, और सूत्रकार कहेंगे। वैसे चूर्णी सूत्र भी हुए अनेक कितने सूत्र है, परंतु तत्वार सूत्र को ही सूत्र कहने की पद्धति फेमस है ना इतना। तो सूत्रकार उमा स्वामी ने लिखा है प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास्तद विधया, यानी प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश तद विधया यानी उसके प्रकार है, ये भेद है किसके बंध के, उस बंध के प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश बंध ये चार भेद है। विस्तृत रुचि एवं सूक्ष्म बुद्धिधारी क्या कहते हैं, ये तो एक होता है संक्षेप में बता देना, और एक कोई होता है विस्तृत विस्तार से जानना चाहता है, और दूसरा और उसमें डिटेल में भी जानना चाहता है। सूक्ष्म बुद्धिधारी महाज्ञानियों के लिए सही तत्व महर्षि भूतबली ने 40,000 श्लोक प्रमाण महाबंध शास्त्र द्वारा निबद्ध किया है, यानी रचना की है उसकी। महाबंध के विमल और विपुल प्रकाश से साधक ज्ञानी अपनी आत्मा के अंतस्थल में छिपे हुए अज्ञान एवं मोहंधकार को दूर कर जीवन को महाधवल बनाता है। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव की आराधना के द्वारा पूजक जिनेन्द्र का पद प्राप्त करता है, उसी प्रकार महाधवल के सम्यक परिशीलन तथा स्वाध्याय से जीवन भी महाधवल हो जाता है। अनुभाग बंध की प्रशस्ति में ग्रंथ को सत पुण्याकर बताया है। यथार्थ में यह सातिशय पुण्य की उत्पत्ति का कारण है, प्रशस्त पुण्य का भंडार है, श्रेयो मार्ग की सिद्धि का निमित्त है। श्रेयो मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, उससे मोक्ष मिलता ऐसा नहीं कहा, उसका निमित्त बताया। प्रवचन सार में कुंकुंद स्वामी ने अरहंत की पदवी को पुण्य का फल कहा है, पुण्य फला अरहंता। अमृतचंद्र सूरी ने टीका में पुण्य को कल्प वृक्ष कहते हुए उसके पूर्ण परिपक्व फल को अरहंत कहा है, यानी उनके पुण्य का उदय पाया जाता है। इतनी बात, अरहंता खलु सकल सम्यक परिपक्व पुण्य कल्प पादप फला, पादप यानी वृक्ष, कल्प पादप यानी कल्प वृक्ष के फल है। महाबंध ग्रंथ में ऐतिहासिक उल्लेख का दर्शन नहीं होता। प्रकृति बंध अधिकार के प्रारंभिक अंश के नष्ट हो जाने से उसके ऐतिहासिक उल्लेख का परिज्ञान होना असंभव है। इस अधिकार के अंत में प्रशस्ति रूप में भी कोई उल्लेख नहीं है। स्थिति बंध, अनुभाग बंध तथा प्रदेश बंध, इन तीन अधिकारों के अंत में ही प्रशस्ति पाई जाती है। प्रशस्ति में ग्रंथकर्ता का नाम तक नहीं आया है। स्थिति बंध के पद्य नंबर 7 और प्रदेश बंध के पद्य नंबर 5 से जो समान है, विदित होता है कि सेन वधु वनिता रत्न मल्लिका देवी ने अपने पंचमी व्रत के उद्यापन में शांत तथा यतिपति माघनंदी महाराज को इस ग्रंथ की प्रतिलिपि अर्पण की थी। मल्लिका देवी को शील निधान ललना रत्न जिनपद कमल भ्रमर सिद्धांत शास्त्र में उपयुक्त अंतकरण वाली तथा अनेक गुणगण अलंकृत बताया है। उन्होंने पुण्याकर महाबंध पुस्तक जिन माघनंदी मुनीश्वर को भेंट की थी, वे गुप्तित्रय भूषित शल्य रहित काम विजेता सिद्धांत सिंधु की वृद्धि करने को चंद्रमा तुल्य तथा सिद्धांत शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। मेघचंद्र व्रतपति के चरण कमल के भ्रमर सदृश थे। मल्लिका देवी सारे जगत में अपने गुणों के कारण विख्यात थी। सत्कर्ष पंजिका से ज्ञात होता है कि प्रशस्ति में आगत सेन का पूरा नाम शांति सेन है, वे राजा थे। राजपत्नी मल्लिका देवी द्वारा व्रतोद्यापन के अवसर पर शास्त्र का दान इस बात को सूचित करता है, उस समय महिला जगत के हृदय में जिनवानी माता के प्रति विशेष भक्ति थी। राजा शांतिसेन सद्गुण भूषित थे। प्रशस्ति में गुणभद्री सूरी का भी उल्लेख आया है, उनको काम विजेता निश्चल्य बताया है। उग्रादित्य नाम के लेखक ने महाबंध की कापी लिखी थी, यह बात सत्कर्म पंजिका से ज्ञात होती है। प्रशस्ति इस प्रकार है, ये प्रशस्तियां सभी लिख दी है उन्होंने, कहां कहां क्या आई है। हम 66 पेज पर आते हैं अभी। महाबंध शास्त्र का प्रमेय बंध तत्व है। बंध तत्व के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा है। षटखंडागम के द्वितीय खंड खुद्दा बंध यानी क्षुद्र बंध की अपेक्षा षष्ठ खंड में बंध के विषय में विस्तार पूर्वक प्रतिपादन होने के कारण प्रतीत होता है कि उसे महाबंध कहा गया। वो खुद्दा बंध और ये महाबंध। तत्वार सूत्र बंध के विषय में यह व्याख्यान करता है, स कषायत्वाद जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंध। जीव कषाय सहित होने से कर्मरूप परिणत होने योग्य पुद्गलों को कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसे बंध कहते हैं। यहाँ बंध को समझने के पूर्व कर्म सिद्धांत पर प्रकाश डालना उचित जचता है, कारण बंध के विवेचन की आधार भूमि कर्म तत्व को हृदयंगम करना परम आवश्यक है। कर्म की अवस्था विशेष का ही नाम बंध है। अब यह अलग अलग दर्शनों में कर्म का क्या क्या अर्थ किया है उसकी बात यहाँ लिखी है विस्तार से। कौन से ग्रंथों में क्या क्या लिखा है उसके में और हमारा यहाँ पर समय सार का भी अभ्यास हुआ है और अन्य पंचाध्याय का भी हुआ है, उसके सब उन्होंने यहाँ गृह द्रव्य संग्रह सबकी कोटेशन दिए है, इसलिए हम उसको थोड़ा गौण करके आगे देखेंगे। द्रव्य संग्रह भी है, अनुगार धर्म संबंध भी है। कुनकुनाचार्य की बातें बहुत सारी लिखी यहाँ पर, समय सार की भी, प्रयोजन सार, समय सार, पंचविंशति टीका की है, तत्व ज्ञान तरंगिणी की है। यानी वो कर्म पुद्गल क्या है, मूर्त अमूर्त का बंध कैसे हो सकता है, उसकी बात भी उन्होंने ले ली है। वेद ज्ञान का रहस्य, नहीं ये तो सभी हमने जो अलग अलग ग्रंथों में पढ़े हुए ना, वही समय सार की भी बात है। यानी वहाँ हल्दी और चूने से जो लाल रंग होता है वैसे वैसे वो बातें हैं, ये अपने सब विषय हुए हुए हैं। अमृतचंद्र की बातें, प्रवचन सार की, समय सार की वगैरह, हाँ आगे मैं वहीं पर आई है, 84 पर आई हूँ। आत्मा को कर्मबद्ध, क्रमबद्ध नहीं, कर्मबद्ध की बात है। कर्म के आश्रय के कारण वगैरह ये सब आएगी, हाँ क्योंकि अलग अलग ग्रंथों की उदाहरण है थ्रू आउट उनके। अभी उन्होंने कर्म के बारे में भी ये 1.03 पर बताया, परंतु अपना ये कर्णन योग में भी ये विषय हुआ है, अपना कर्मकांड में भी हो गए हैं। 105 पेज पर कर्मों के आगमन के कारण भी बताए, ये भी हमने बहुत बार देखी है। देखो ज्ञानावरण के कारण बताए, थोड़ा ले लेते वहां से। ज्ञानावरण कर्म में विशेष कारण निम्नलिखित बातें बताई गई, जैसे निर्मल ज्ञान के प्रकाशित होने पर मन में दूषित भाव रखना, ज्ञान को छिपाना, योग्य व्यक्ति को दुर्भाव वश ज्ञान प्रदान न करना, दूसरे की ज्ञान साधना में बाधा डालना, वाणी अथवा प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञानवान के ज्ञान का निषेध करना, पवित्र ज्ञान में लांछन लगाना, निरादर पूर्वक ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञान का अभिमान तथा ज्ञानियों का अपमान, अन्याय पक्ष समर्थन में शक्ति लगाना, अनेकांत विद्या को दूषित करने वाला कथन करना आदि, इस प्रकार के कार्यों से जो जीव के मलिन भाव होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार का मलिन कर्मपुंज गृहित होता है जो ज्ञान के प्रकाश को ढांकता है। यानी ज्ञानावरण कर्म में और तीव्र अनुभाग का बंध होता है। ये हमने कर्मकांड में भी ये बातें पढ़ी थी सभी। हाँ हम अभी आगे आते हैं। कहाँ से लेना है मूल, शुरू करना है क्या? चलो विषय परिचय पर आते हैं। 115 पृष्ठ। महाबंध के प्रथम भाग का नाम प्रकृति बंधाधिकार पैड़ी बंधा यारो है। इसमें प्रकृति बंध का अधिकार है। प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करना प्रकृति समुत्कीर्तन कहलाता है, जो महाबंध के प्रथम भाग का मूल विषय है। किंतु तार पत्र के त्रुटित होने से कुछ अंश प्रकाशित नहीं हो सका। प्रकृति समुत्कीर्तन के दो भेद है, मूल प्रकृति समुत्कीर्तन और उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तन। अपने अंतर्गत समस्त भेदों का संग्रह करने वाली तथा द्रव्यार्थिक ने निबंधक प्रकृति का नाम मूल प्रकृति। अलग अलग अवयव वाली तथा पर्यायार्थिक नए निमित्तक प्रकृति को उत्तर प्रकृति कहते हैं, वो भेदों को हम उत्तर प्रकृति कहते हैं। मूल में जीव और कर्म स्वतंत्र दो द्रव्य हैं। जीव अमूर्त है और कर्म मूर्तिक है। अनादिकाल से जीव और कर्म का भावात्मक तथा द्रव्यात्मक संबंध है। प्रकृति शब्द का अर्थ है शील और स्वभाव। निक्षेप की दृष्टि से विचार किया जाए, निक्षेप लगाते हैं ना हम किसी भी विषय पर, तो प्रकृति शब्द पर हम निक्षेप लगाएंगे, नाम स्थापना द्रव्य भाव। तो नाम प्रकृति, स्थापना प्रकृति, द्रव्य प्रकृति और भाव प्रकृति, ये चार भेद हैं। द्रव्य प्रकृति के भी दो भेद है, आगम द्रव्य प्रकृति और नो आगम द्रव्य प्रकृति। द्रव्य का अर्थ यहाँ पर भव्य है, इसके दो भेद है, कर्म द्रव्य प्रकृति और नो कर्म द्रव्य प्रकृति। जैसे घट सकोरा आदि की प्रकृति मिट्टी है, पुद्गल की प्रकृति पूरण गलन है, वैसे ज्ञानावरण आदि ना करना। आठ कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति है, ने अपना अपना स्वभाव। ज्ञान जीव का स्वभाव है और ज्ञान का आवरण करना यह ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। ज्ञानावरण कर्म की पांच प्रकृतियां हैं, आभिनिबोधिक ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। मिथ्यात्व के उदय में होने वाले आभिनिबोधिक श्रुत ज्ञान तथा अवधि ज्ञान को कुज्ञान कहा जाता है। ज्ञान एक होने पर भी बंध विशेष के कारण वह पांच प्रकार का कहा गया है। आभिनिबोधिक ज्ञान जिसका दूसरा नाम है मति ज्ञान, पांच इंद्रियों और मन के निमित्त से अप्राप्त रूप 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा एवं प्राप्त रूप उन 12 प्रकारों के पदार्थों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा मात्र अवग्रह रूप होता है, इसलिए इसके अनेक भेद हो जाते हैं। अभी यही विषय चल रहा है ना शाम को अपना, क्योंकि मति ज्ञान में पहले पांच इंद्रिय और मन के द्वारा तो 6 भेद तो उसके हुए, उसके बाद अवग्रह या अवाय धारणा के रूप से 4 भेद और होते हैं। परंतु अवग्रह में 2 प्रकार करते हैं, एक क्या लिया तो अप्राप्त और प्राप्त। अप्राप्त होकर जो जानना होता है और ये प्राप्त होकर जानना, ऐसे 2 भेद किए। अर्थावग्रह व्यक्त वस्तु को ग्रहण करता है जो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। यहाँ अवय धारणा ज्ञान भी पांच इंद्रिय और मन से होने के कारण अर्थावग्रह की भांति प्रत्येक 6 भेद वाला है। इस कारण व्यंजनावग्रह के 4 भेदों में अर्थावग्रह आदि के 24 भेदों को मिलाने से 28 भेद होते हैं। समझ में आई बात? स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा प्रथम व्यंजनावग्रह होता है, बाद में अर्थावग्रह होता है। और चक्षु और मन के द्वारा डायरेक्ट व्यंजनावग्रह होता है, सॉरी अर्थावग्रह होता है। इसलिए वो 24 और ये 4 28 भेद हो गए। इन 28 में 12 से गुणा करेंगे। इसके बहु एक बहुविध एक विध क्षिप्र अक्षिप्र उक्त अनुक्त ध्रुव अध्रुव निश्रुत अनिश्रुत इन 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करने से प्रत्येक के 12 12 भेद होते हैं। तो 28 को 12 से गुणा करने पर 336 भेद मति ज्ञान या अभिनिबोधिक ज्ञान के होते हैं। और मति ज्ञानावरण यानी अभिनिबोधिक ज्ञानावरण के भी इतने ही भेद हो गए। ज्ञान का दूसरा भेद श्रुत ज्ञान है। यह मति ज्ञान पूर्वक मन के आलंबन से होता है। श्रुत ज्ञान के शब्दजन्य तथा लिंगजन्य दो भेद किए गए हैं। मन का अवलंबन तो संगी में लेना है, बाकी एक इंद्रियों में भी श्रुत ज्ञान तो होता ही है, वहां कोई मन तो है ही नहीं है। यथार्थ में पदार्थ को जानकर उसके संबंध में या उससे संबंधित अन्य पदार्थ के संबंध में विचारधारा की प्रवृत्ति होना श्रुत ज्ञान है। इस दृष्टि से श्रुत ज्ञान अक्षरात्मक अनक्षरात्मक अथवा द्रव्य भाव के भेद से दो प्रकार का है। अतः आचारांग सूत्रकदांग आदि 12 अंग, उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व और सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक द्रव्य श्रुत है और द्रव्य श्रुत अक्षरात्मक है। उसके सुनने पढ़ने से श्रुत ज्ञान की पर्याय रूप जो उत्पन्न हुआ ज्ञान वह भाव श्रुत है। वर्तमान परमागम नाम से द्रव्य श्रुत तथा परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन आत्मानुभव ज्ञान रूप भाव श्रुत ज्ञान है। अतः आत्म विषय उपयोग दर्शन कहा गया है। दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता क्योंकि ज्ञान बाह्य अर्थों को विषय करता है। ये इस पर वो चर्चा चली। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से सीमित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। इसको सीमा ज्ञान भी कहते हैं। महास्कंध से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त पुद्गल द्रव्यों को असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र काल और भावों को तथा कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे अवधि ज्ञान समझना चाहिए। अभी ये जीव कैसे कर्म से संबंधित है ना, तो वो भी कथनचित उसको रूपी कहेंगे तो उसको भी जानेंगे, उन जीवों को भी जानेंगे। जहाँ इस ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है वह अवधि ज्ञानावरणी कर्म है जो एक प्रकार का है। उसकी प्ररूपना दो प्रकार की है। क्षोभशम की दृष्टि से असंख्यात प्रकार का होने पर भी अवधि ज्ञान के मुख्य दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों नारकियों और तीर्थंकरों के होता है, यानी गृहस्थ तीर्थंकरों के। ग्रह से ने या छद्मस्तक अवस्था में बने नहीं है, जिसको भव प्रत्यय कहा, छद्मस्त अवस्था में। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तिर्यंचों तथा मनुष्यों के होता है। ये इसका क्या विशेषता है कि तीर्थंकर जब वो गृहस्थ है या छद्मस्थ है उनको भव प्रत्यय कहने का कारण क्या है, उसमें क्या विशेषता होती है अवधि ज्ञान में? नहीं, वो जाने दो, परंतु उसको भव प्रत्यय क्यों कहा? देखो देवों और नारकियों को तो नियम से होता ही है, इनको भी होता है, तो उसमें भव प्रत्यय में क्या विशेषता होती है? भव प्रत्यय की विशेषता क्या है? वो सर्वांग से होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान पूरे आत्म प्रदेशों से होता है। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान आत्मा के कुछ प्रदेशों से होता है, जैसे वो नाभि के नीचे ऊपर जो कुछ बताते हैं वहां के प्रदेशों के द्वारा हो जाना होता है। संपूर्ण ये आवरण का शोषण नहीं होता है संपूर्ण प्रदेशों में। हाँ, जिस भाव में तीर्थंकर होने वाले उसकी बात है। इन दोनों अवधि ज्ञानों के अनेक भेद हैं। हाँ, वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है। और देशा सॉरी ये गुण प्रत्यय वाला है विशिष्ट आत्म प्रदेशों के, विशिष्ट स्थान के आत्म प्रदेशों के होता है। तो उनके अनेक भेद है, देशावधि परमावधि सर्वावधि, हीयमान वर्धमान अवस्थित अनवस्थित, अनुगामी अननुगामी, स्वप्रतिपाती अप्रतिपाती, एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र, इन सब का प्रतिबंधक होने से अवधि ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। इसके असंख्यात कर्म प्रकृतियां हैं। काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान जघन्य से दो तीन तथा उत्कर्ष से सात आठ भवों को जानता है। ये तो मन परे के बारे में ये कथन था, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण काल को जानता है वो, हाँ, और देशावधि पल्ले तक को जानता है। पता नहीं है क्यों मन परे के लिए सात आठ भवों को जानता है सब। दूसरों के मन में स्थित विषय को जानता है वो मन परे ज्ञान है। ऊपर ही बताया था ना उन्होंने, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक को जानता है, सेकंड लाइन में आई थी बात, ये असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र तक को जानता है, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक को जानता है। अभी असंख्यात लोक प्रमाण काल का अर्थ क्या हुआ समझते हो? असंख्यात लोक प्रमाण काल का अर्थ क्या हुआ? उसमें जो प्रदेश है उसको समयों में कन्वर्ट करो। अभी अंगुल का असंख्यात भाग में जितने प्रदेश है उसको समयों में कन्वर्ट करो तो असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाए। और ये अंगुल नहीं, वो तो पूरा लोक को भी असंख्यात गुणा करना, तो उसके प्रदेश कितने, उसके समय कितने, वो काल कितना बड़ा होगा। इसलिए दो तीन भोग की बात है ना, यहाँ तो ये असंख्यात लोक की बात बताई थी उन्होंने। उत्कृष्ट से और काल का जगह निकाल तो बहुत छोटा है। दूसरे के मन में स्थित विषय को जानता है वो मन परिज्ञान, इसका जो आवरण करता है वो मन परिज्ञान आवरण है। मन परिज्ञान के दो भेद है, रुजुमति और विपुलमति। 45 लाख योजन के भीतर के चित्तगत स्थित पदार्थ को मन परिज्ञान जानता है। ये पदार्थ इसका, उसके मन में स्थित पदार्थ इतने क्षेत्र के होने चाहिए, बात बता रहे। मन परिज्ञान पराधीन ज्ञान नहीं है। वर्तमान काल में जीवों के मन में स्थित सरल मनोगत वचनगत और कायगत पदार्थ को जो जानता है वह रुजुमति मन परे ज्ञान है। जिसकी मति विस्तीर्ण है वह विपुलमति मन परे ज्ञान है। द्रव्य की अपेक्षा वह जघन्य रूप से चक्षु इंद्रिय की निर्जरा को जानता है। काल की अपेक्षा जघन्य से सात आठ भूमि को और उत्कृष्ट से असंख्यात भूमि को जानता है। एक्चुअली चक्षु इंद्रिय की निर्जरा को जानता है लिखा है, परंतु वहां पर यानी इंद्रिय नहीं, वो भी जो द्रव्य इंद्रिय जो है उसके जो परमाणु निकल जाते हैं उसकी बात है। क्षेत्र शिर हुआ, क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य से योजन पृथक को प्रमाण यानी आठ नौ घन योजन प्रमाण क्षेत्र को जानता है। भाव की अपेक्षा जो भी द्रव्य इसे ज्ञात है उस उसके असंख्यात पर्यंग को जानता है। रुजुमति में इंद्रिय और मन की अपेक्षा होती है किंतु विपुलमति में उसकी अपेक्षा नहीं होती। केवल यान संपूर्ण तथा अखंड है, खंड रहित होने से वह सकल है, पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त होने से उसे संपूर्ण कहा है। कर्म शत्रुओं का अभाव होने से वह असपत्न है। केवल ज्ञान का विषय तीनों काल और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थ माने गए हैं। यथार्थ में केवल ज्ञान की स्वच्छता का ऐसा परिमाण है कि तीनों लोकों व तीनों कालों के जितने पदार्थ हैं वे सब एक साथ एक समय में केवल ज्ञान में झलकते हैं। लोक में ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय न हो। अतः ज्ञान का धर्म ज्ञेय को जानना और ज्ञेय का स्वभाव ज्ञान का विषय होना, इन दोनों में विषय विषय भाव का संबंध है। लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान संपूर्ण संबंधों से रहित परम स्वाधीन है। फिर ज्ञान ज्ञान चेतना से निकलकर बाहर जाता नहीं और ज्ञेय कभी भी ज्ञान में प्रवेश करता नहीं। अतएव केवल ज्ञान असहाय है, उसे मन और इंद्रियों की तथा ज्ञेय द्रव्यों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि केवल ज्ञानी का ज्ञान युगपत सबको जानता है, क्रमवार नहीं। लेकिन एक साथ तीनों लोकों तीनों कालों के सभी द्रव्यों उनके गुणों और पर्यायों को जानने पर भी ज्ञान सीमित नहीं होता बल्कि व्यापक हो जाता है। कर्मों की सामान्य प्रकृति 148 है, विशेष भेद किए जाए तो अनंत है। ओघ से पांच ज्ञानावरण पांच अंतराय की प्रकृतियों का सर्वबंध होता है। अभी एक निरंतर बंध सर्वबंध उसकी चर्चा भी हम विषय में ले लेंगे क्योंकि ये सब आने वाला है, सर्वबंधन और सर्वबंध वगैरह वगैरह, क्योंकि वही बात उन्होंने दोहराई है। अब इस प्रकार ये जो हमने विषय परिचय को भी देखा है, अब हम कल से ये मूल ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। अब यहीं पर विराम देते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे सदा देता हूँ।